ओम ओम शांति। आज 22 जनवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसको दुख नहीं दो, किसी को दुख नहीं। कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो, सदा बात के फरमान पर चलते रहो, कौन दुख नहीं देगा,
संपूर्ण पवित्र,
कौन दुख नहीं देगा। संपूर्ण पवित्र तो तब बनेगा जब दुख नहीं देगा। दुख कौन नहीं देगा, जो दुखी नहीं होगा। जो यदि खुद दुखी है वो दुख ना दे, ये हो नहीं सकता। मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि बाबा जो भी बात बोलता है उसमें पीछे वाली बात को भी जरूर समझना है। पहले मुझे कोई कुछ भी दे, मैंने दुखी नहीं होना, क्योंकि मुझे एक बात याद रखनी है कि वो अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहा है, कोई भी अपने पार्ट में गलती नहीं कर रहा है। किसी में दोष देखना माना मेरे को अभी तक ज्ञान समझ में नहीं आया है, यदि मैं किसी को भी दोष दे रहा। प्रश्न, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है। पत्थर से सोना, पारस बोलते हैं सोने को, ठीक है ना, पारस से, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है जो हमें सोना बनने नहीं देती। ऐसी कौन सी बीमारी है, पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए, मुझे सतयुग का नारायण बनना है। कितने नारायण बनेंगे, कितने नारायण बनेंगे, हां जी, जो सतयुग में जाएंगे उन्होंने पुरुष शरीर लिया तो वो नारायण बनेंगे, और सब जो स्त्री शरीर लेंगे वो सब क्या बनेंगे, लक्ष्मी बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण बनना है तो क्या करना है, नशा होना चाहिए ना,
सारे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे।
हाँ,
तो कहते हैं सिर्फ एक ही लक्ष्मी नारायण बनता
है, नहीं तो यही तो मैं, यही तो मैंने रोक के पूछा,
फिर प्रजा कहाँ से आएगी, सारे लक्ष्मी नारायण बन गए,
क्योंकि प्रजा कहाँ से आएगी, वहां पर प्रजा कहाँ से आएगी, ये तो आपके दिमाग में प्रश्न ही नहीं आया। हाँ, सब नारायण और सब लक्ष्मी, या तो लक्ष्मी बनेंगे या नारायण बनेंगे, जो पुरुष होगा उसको नारायण बोला जाएगा। जैसे यहाँ सारे पुरुषों को पुरुष बोला जाता है, सब स्त्रियों को स्त्री बोला जाता है, वहां सभी पुरुष को नारायण बोला जाएगा, उसके बाद दूसरा आपका अपना पर्सनल अलग से नाम होगा। ये बात हमें समझनी है। तो इसलिए नारायणी नशा, कि मुझे सतयुग का नारायण बनना है, लक्ष्मी बनना है, मतलब दोनों बराबर हैं इसमें, मतलब कोई छोटा बड़ा,
कोई में भी कोई बनना तो एक ही है। आपने तो सारी लक्ष्मी नारायण बना दी, मैं भी लक्ष्मी नारायण, आप भी लक्ष्मी नारायण,
नहीं आप लक्ष्मी नारायण बनेंगे, या तो आप लक्ष्मी बनेंगे या आप नारायण बनेंगे,
नारायण या लक्ष्मी,
हाँ नारायण या लक्ष्मी, मतलब वहां पर स्त्री पुरुष ही इसी प्रकार से स्त्री, सभी स्त्रियों को वहां लक्ष्मी कहा जाएगा, चाहे वो
सारी लक्ष्मी अभी बोलते
हैं, अभी बोलते हैं ना, तो अभी मतलब सिर्फ शादी के टाइम पर बोलते हैं या कभी जी लक्ष्मी लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे घर नारायण आए हैं उसका चौक पर नारायण के रूप में पूजा करते हैं, परंतु वहां सभी लक्ष्मी सभी नारायण कहलाएंगे, परंतु उनका अलग नाम अपना अलग वहां पर होगा, ठीक है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में रखनी है, कहानी हमारे दिमाग में रहे और कंसेप्ट छोटा से छोटा हमारी बुद्धि में क्लियर रहे। देह अभिमान टूटा हुआ हो, मतलब देह का अभिमान नहीं हो, क्योंकि देह का जो झूठा अभिमान है ना, झूठे संबंध भी इसी से याद आ जाते हैं, ये देह अभिमान ही कड़े से कड़े बीमारी है। देह समझते ही मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि एक देह को मेरा कहने से हम स्वर्ग से नरक में आए हैं, अब इस देह को मेरा कहना छोड़ने से इस नरक से स्वर्ग में जाएंगे। जब तक हम देह को मेरा कहना नहीं छोड़ेंगे तब तक देह अभिमान खत्म नहीं होगा, तब तक परम धाम जा नहीं सकते और सत्युग के मालिक बन नहीं सकते। जब तक देही अभिमानी नहीं तब तक पारस नहीं बन सकते, सत्युग के मालिक नहीं बन सकते, सोना नहीं बन सकते, स्वर्णिम दुनिया में नहीं जा सकते। बाप के मददगार बन सकते हैं, तो जब देही अभिमानी बनेंगे तो सोना भी बनेंगे और इस सत नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए बाप के मददगार भी बनेंगे। बाप को वैसे मदद की कोई जरूरत नहीं है, हम जो करेंगे अपना भाग्य बनाएंगे। नंबर दो, सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। जब आप सबकी सेवा करेंगे तो आपकी बुद्धि सोने की बन जाएगी, क्योंकि सबको ज्ञान सुनाएंगे, औरों को ज्ञान समझाएंगे तो आपको भी ज्ञान समझ में आ जाएगा। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम युगी समझो। सतयुग तो नहीं समझेंगे, सतयुगी तो नहीं समझेंगे, अभी तो हम कहां हैं? संगम युगी हैं। सतयुगी क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि अभी हम देह समझते हैं अपने आप को, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आत्मा समझ लेते हैं, बाकी सारा समय क्या समझते हैं? देह समझते हैं। तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे और तो सभी अपने को कल युगी समझेंगे, बाकी तो सब अपने आप को संगम युगी नहीं कह सकते, सतयुगी नहीं कह सकते। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, कहां कलयुग, कहां संगम युग और कहां सतयुग। सतयुगी कब समझेंगे? जब हम देही अभिमानी बन जाएंगे तब हम सतयुगी। अभी कभी देह अभिमानी तो कभी देही अभिमानी तो कभी तो मतलब ये क्या हो गया संगम। सतयुग और कलयुग, स्वर्गवासी या नर्कवासी, तुम तो ना स्वर्गवासी हो और ना नर्कवासी, तुम हो पुरुषोत्तम संगमवासी। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई नहीं जानते, तुम भल जानते भी हो परंतु भूल जाते हो। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं, वे तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। राम राज्य तो है ही नहीं, राम राज्य तो है ही नहीं, रावण को जलाते रहते हैं। इससे सिद्ध है कि रावण का राज्य है, जब रावण जिंदा है रावण को जला रहे हैं। राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है ये भी तुम समझते हो। नंबर बात शास्त्र अनुसार बाप आते हैं संगम युग पर तो ये भेंट की जाती है सतयुग और कलयुग की। संगम पर आकर दिखाते, देखो ये है कलयुग और ये है सतयुग, ये बीच में हम खड़े हैं। तो दोनों सामने दिखाते हैं ना बाबा, आकर समझाते हैं। कलयुग में रहने वालों को नर्कवासी और सतयुग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन और नर्कवासी को पतित कहा जाता है। तुम्हारी तो बात ही निराली है भाई, तुम्हारी तो बात ही निराली है। कैसे निराली है? आप दोनों का आनंद लेते हो, नर्क का भी और स्वर्ग का भी, दोनों के बीच में खड़े हो जाते हो, नर्क भी देखते हो और स्वर्ग भी देखते हो। बहुत अच्छी बात है ना, तुम्हारी तो बात ही निराली है। तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो, तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं। वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कंट्रास्ट बताना, कंट्रास्ट बताना चाहिए। जो मनुष्य अपने को नर्कवासी पतित कंगाल समझे लिखना चाहिए। अब ये पुरानी कलयुगी दुनिया है, सतयुग स्वर्ग नई दुनिया है, तुम नर्कवासी हो या स्वर्गवासी, तुम देवता हो या असुर, तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं। तुम अपने आप को स्वर्गवासी तो नहीं कहेंगे, कोई ऐसे समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे, सब सुख है, एसी भी लगा हुआ है, हीटर भी लगा हुआ है, बरसात से रोकने वाला साधन भी लगा हुआ है, बाकी दुनिया मरो हम तो ना मरे, हमारे लिए सारी सुविधाएं हैं, कोई कमी ना है, यही स्वर्ग है जी, हम तो स्वर्ग में बैठे। अरे बाबा कहते हैं अरे ये तो नर्क है ना, सत्युग है कहां, ये रावण राज्य है, तब तो रावण को जलाते हैं, उनके पास भी कितने जवाब होते हैं, सर्वव्यापी पर भी कितनी बहस करते हैं, मानने को तैयार नहीं होते। पूरा पूरा दिन मैंने आर्य समाज वाले के साथ लगा दिया, शास्त्री जी के साथ, मान के नहीं दिया, और मेरे को भगा भी नहीं सकता था, मैं उसके घर गया हुआ था, अब मुझे ये भी नहीं कह सकता कि तू जा, ठीक है नहीं, और मैं भी जो है ना बैठा रहा शाम तक, बड़ा हिम्मत है उसकी, उसके बाद उसने नहीं कहा कि मेरे पास आ जा। हाँ जी, उसके बाद मैंने कई बार कहा, मैंने कहा अच्छा आज बैठे, नहीं अभी टाइम नहीं, आज मेरे को ये है, आज मेरे को ये है, और खुद उसने बुलाया, आप आ जाओ जी। हाँ नहीं, मतलब वो मेले में देखने आया था और वहां उसको लगा, तो उसने कहा जी आप बैठे हैं, आपको मैं, हम बात करें, आपको बताए, उसने सोचा कि मैं इसको बता दूंगा, मैं अब वो भी एग्जांपल दिए जाए और मैं भी एग्जांपल दिए जाओ। कितनी डिबेट करते हैं, आप कहीं भी मिलता है ना, हाँ बैठेंगे भाई जी, एक दिन बैठेंगे, क्या करे भैया, तो कितनी डिबेट करते हैं, तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो, अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया, ऐसा क्लियर कंट्रास्ट बताना है, इसमें बहुत ब्रेन चाहिए, बहुत दिमाग चाहिए, ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने से पूछे कि मैं नर्कवासी हूं या स्वर्गवासी, ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है, ये राम राज्य है या रावण राज्य है, हम पुरानी कलयुगी दुनिया के रहवासी हैं या नई दुनिया के रहवासी हैं। हिंदी में क्लियर लिख कर फिर अंग्रेजी गुजराती में ट्रांसलेट करो, पहले हिंदी में लिखो जैसी भाषा में आपको आता है, फिर उसको ट्रांसलेट कर दो, तो मनुष्य अपने से पूछे कि हम कहां के रहवासी हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग अभी है कहां, अभी तो कलयुग है, जरूर पुनर्जन्म भी यहां ही लेंगे ना, स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, वहां अभी कैसे जाएंगे, ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ऐसे क्लियर कंट्रास्ट हो उसमें लिख दो भगवानोवाच, हर एक अपने से पूछे मैं सतयुगी राम राज्य निवासी हूं या कलयुगी रावण राज्य का निवासी हूं। तुम ब्राह्मण हो संगम वासी, तुमको तो कोई जानते ही नहीं, तुम हो सबसे न्यारे, तुम सतयुग कलयुग को यथार्थ जानते हो, तुम सतयुग कलयुग को यथार्थ जानते हो, तुम ही पूछ सकते हो, तुम ही पूछ सकते हो कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो, ये तुम्हारा किताब भी बना सकते, ये तुम्हारा किताब भी बना बन सकता है, नई नई बातें निकालनी पड़े ना, जिससे मनुष्य समझे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तुम्हारी ये लिखत देख आप पे ही अंदर से पूछेंगे, इसको आयरन एज तो सब कहेंगे, इसको आयरन एज तो सब कहेंगे, सतयुगी डीटी राज्य तो इनको कोई कह ना सके, ये हेल है या हेवन। ऐसी फर्स्ट क्लास लिखत लिखो कि मनुष्य अपने को समझ जाए, मनुष्य अपने को समझ जाए कि हम बरोबर नर्कवासी पतित हैं, हमारे में देवी गुण तो है नहीं, कलयुग में सतयुगी कोई हो ना सके। ऐसे विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। जो ओटे सो अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन, गीता में अर्जुन का नाम दिया। बाबा कहते हैं ये जो गीता है उसमें आटे में लून नमक है, लून और चीनी में कितना फर्क है, लून और चीनी में कितना फर्क है, वे मीठा और वे खारा, वे मीठा और वे खारा। श्री कृष्ण भगवानों वाच लिखकर गीता ही खारी कर दी है, गीता ही खारी कर दी है। मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़ते हैं, मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़ते हैं, विचारों को ज्ञान के राज का भी पता नहीं है। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं और किसको पता ही नहीं। नॉलेज तो बहुत सहज है परंतु भगवान पढ़ाते हैं ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं, टीचर को ही भूल जाते हैं। कितनी कमाल की बात है, टीचर को ही भूल जाते हैं, नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं है। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हमको भूल जाते हैं, बाबा हमको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं माया काम नहीं है, तुम देह अभिमानी बन पड़ते हो, बहुत विकर्म बन जाते, बहुत विकर्म बन जाते हैं। ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विकर्म ना बने, विकर्म ना होते, ऐसा कोई खाली दिन नहीं। एक मुख्य विकर्म ये करते हो, क्या करते हो, जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो, बाप के फरमान को ही भूल जाते हो। बाप फरमान करते हैं मन मना भव, मन मना भव, अपने को आत्मा समझो, ये फरमान मानते नहीं है तो जरूर विकर्म ही होगा, तो जरूर विकर्म ही होगा, बहुत पाप हो जाते हैं। बाप का फरमान है बहुत सहज भी है, बाप का फरमान बहुत सहज भी है तो बहुत कड़ा भी। कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में बैठ नहीं सकते, 5 मिनट भी यथार्थ रीति बैठ नहीं सकते। अगर सारा दिन याद में रहें फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप ने समझाया है, बाप ने समझाया है, इसमें मेहनत है, इसमें मेहनत है। तुम वे जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस है, परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल ही अभ्यास नहीं, याद की यात्रा का बिल्कुल अभ्यास नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये है नई बात, ये है नई बात। विवेक कहता है ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए, थोड़ा टाइम निकाल, रोटी टुकड़ खाते हैं वे भी बाप की याद में, जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे और खाते हैं। बाप को याद करते रोटी टुकड़ खाते रहे बस, परंतु माया याद करने नहीं देती। काल तो पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया, जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। टाइम लगता है, कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए ये हो नहीं सकता। उसमें तो दो बाप है, हमारे पास क्या है, कितने बाप है, एक बेहद के बाप को अपना शरीर नहीं है, वो इनमें प्रवेश करता है, हमारे से बात करते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। जब हमारा बड़ा बाप आके हमें समझा रहा है, भगवान आके पढ़ा रहा है, तो हमें उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को ये श्रीमत देते हैं कि देह सहित सब धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो, मेरा कहना मानो। तुम पवित्र आए थे, परम धाम से कैसे आए थे, पवित्र आए थे, 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अब पावन बनना है। पावन बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलो, तब बाप गारंटी करते हैं तुम्हारे पाप कट जाएंगे, कट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर वहां देह भी कंचन मिलेगी, आत्मा कंचन तो फिर देह भी कंचन मिलेगी। कंचन माना सोना, सोना मिलना मतलब एकदम शुद्ध, कंचन कहा जाता है प्योर शुद्ध सोने को, जिसमें जरा भी मिलावट ना हो। सोना तो होता ही है, परंतु सोने में भी कंचन उसे कहा जाता है जिसमें कुछ ना मिलावट की गई हो। जो इस कुल का होगा वही तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाएगा, कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है, पावन बनना है तो किसको दुख नहीं देना है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, मनसा में तूफान आएंगे। तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना, तुम भल सच बताओ वा ना बताओ, सच बताओ वा ना बताओ, परंतु बाप खुद कहते हैं माया के बहुत विकल्प आएंगे, माया के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कभी विकर्म नहीं करना, कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। तो ये कंट्रास्ट की बातें अच्छी रीति लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म नहीं लेते, शिव पुनर्जन्म नहीं लेते, वे सर्वगुण संपन्न देवता है, ये तो है ही बाप। तुमने देखा है पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए हैं, इसका मतलब है कि वे इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे, बुद्धि बड़ी थी, उन्होंने फिर शरीर को बड़ा बना दिया है। तुम्हारे जैसी विशाल बुद्धि और कोई की हो ना सके, तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर पैसे बर्बाद करते हैं, कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, कितना खर्चा किया, बाप कहते हैं तुम कितने पैसे गंवाते आए हो, बेहद का बाप उलाना देते हैं, तुम फील करते हो बाबा ने पैसे बहुत दिए हैं, राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया, वह जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर उससे कमाई होती है, फिर उससे कमाई होती है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, ये ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है, जितना ज्ञान लेंगे उतना कमाई होगी, जिससे बेहद की बादशाही मिलती है। भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं, एम ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं, बाप जो नॉलेजफुल है वो बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, ये है बिल्कुल नई पढ़ाई, ये है बिल्कुल नई पढ़ाई। वे भी कौन पढ़ाते हैं, भगवान, नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने ये पढ़ाई से ऊंच पद पाया है, कहां राजाई और कहां प्रजा, कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा पार है, तो बेड़ा पार है। स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ा सकते हैं, हम पढ़ते हैं फिर पढ़ा सकते हैं, वा नहीं, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना है, हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते, ये देखना है अपने आप को। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना चाहिए, पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं, तुमको बनना है सोने की बुद्धि, वे उन्हों की बनेगी जो सर्विस में रहेंगे, जो सर्विस में रहेंगे। बैज पर भी किसको समझा सकते हो, बैज पर भी किसको समझा सकते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलेगा, और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है ना, कहां 5000 वर्ष की बात, कहां लाखों वर्ष की बात, कितना फर्क है। तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं है, तो भी समझते नहीं है, जैसे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, बिल्कुल ही क्या बन गए हैं, पत्थर बुद्धि है। ये बैज ही तुम्हारे लिए जैसे एक गीता है, बैज ही तुम्हारे लिए क्या है, एक गीता है, इसमें सारी पढ़ाई है। मनुष्यों को तो भक्ति मार्ग की गीता ही याद रहती है, अभी तुम जो बाप द्वारा गीता सुनते हो उससे तुम 21 जन्म के लिए सदगति को पाते हो। शुरू शुरू में तुमने ही गीता पढ़ी है, पूजा भी तुमने ही शुरू की है, अब पुरुषार्थ कर गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। कोई ने कोई को समझाते रहो, उसमें से एक दो निकलेंगे, एक दो निकलेंगे। अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं तो कोशिश कर अलग अलग फार्म भराए, अलग अलग समझाना चाहिए, नहीं तो उन्हों में एक भी ऐसा होगा तो औरों को खराब कर देगा।
एक क्लास तो साथी होगी,
ऐसा है भाई, कोर्स कराते हैं ना, जब अब एक आप जैसे विचार वाला, एक उसके विचार जैसे वाला, एक उसका, हर एक के विचार अलग अलग है ना, अब आपके साथ बात करने लग गया तो बाकी सारे बोर होंगे, उनके साथ बात करने लगा तो वो बोर होंगे।
एक ही साथ क्लास लेने से बोर क्यों होंगे?
क्लास नहीं,
अलग लेंगे तो बैठे वो तो बोर होंगे।
कोर्स, कोर्स के टाइम पर बाबा कहते उनको एक मत पर जब सारे मान लेके परमात्मा आके पढ़ा रहा है और ये परमात्मा की मुरली हम सुन रहे हैं, फिर उसको सबको सारी क्लास चाहे हजार वाली बैठी हो, ठीक है नहीं, फिर कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न जो है ना, इसलिए अलग बैठकर उनको कोर्स अच्छी तरह कराया जाए। जो कोर्स बेसिक जिनका अच्छा अच्छी तरह नहीं होता ना, वो फिर सारी जिंदगी अटकते रहते हैं, उनको कोई ना कोई बात अटकाती रहेगी, क्योंकि जहां उनके मन में फिर भी प्रश्न रहते हैं। अब कितने भाई बहनों के आते हैं कि भाई जी अब हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रश्न क्लियर नहीं होते हैं तो बेसिक कोर्स क्लियर नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं वो
उत्तर बनेंगे। प्रश्न
छोटी छोटी बातें जो पहली क्लास में हमें क्लियर हो जाए,
तो आपकी बात नहीं आएगी। मैंने आपको पूछा है तो ये क्वेश्चन हो गया
नहीं, आप पूछे, परंतु आप यदि पहली क्लास वाली बातें पूछेंगे, पहली क्लास की बात पूछेंगे, तो बाकी सारे कहेंगे हमको पता है इसका ध्यान नहीं है, ठीक है नहीं?
भाई दिमाग तो सबका एक बराबर
नहीं था, इसीलिए तो
सुनते सुनते भूल जाता है।
तो इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं कि आप कोर्स जो है ना अलग अलग कराओ बैठ करके, ताकि उसके जिसको भूल जाता है, जिसको कम समझ आए, उसको अच्छी तरह समझाने में आप टाइम थोड़ा लगा दो, परंतु जब वो क्लास में बैठेगा तो उसे वो बेसिक बातें नहीं पूछनी पड़ेगी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। जो छोटी छोटी बातें हैं वो तो क्लियर होनी चाहिए। अब जिसकी बुद्धि में ये नहीं आया कि परमात्मा पढ़ा रहा है, अब वो क्लास में बैठना शुरू कर दे तो वो तो फिर भक्ति मार्ग वाली चर्चाएं करेगा। जिसको समझ में आ गया कि भगवान पढ़ा रहा है, भक्ति मार्ग अलग है और ज्ञान मार्ग अलग है, तो ये है गीता भक्ति मार्ग की जो दुनिया वाले पढ़ते हैं, और ये गीता है ज्ञान मार्ग की जो भगवान आके पढ़ा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं ये बैज ही आपकी गीता है, आपके पास बैज है तो आप इस बैज पर उनको सारा ज्ञान सुना सकते हो, नहीं तो उन्होंने एक भी ऐसा होगा तो औरों को खराब कर देगा, वो बातें ऐसी करेगा सब खराब हो जाएंगे। मतलब जैसे हम ट्रेन पे आते थे ना, तो कई बार भीड़ लग जाती थी, उनमें कोई ना कोई एक ऐसा आ जाता था, ऐसी बातें करता था, वो सारे के सारे तितर बितर हो जाते थे, मतलब वो बात ही नहीं करने देता था। और कोई कितना भी आता था तो कहते थे भाई तू चुप रहे, इनको बोलने दो। तो मतलब ये सारी बात होती है, डिपेंड करती है। बाबा कहते हमेशा कोशिश करो कि अकेले में समझाओ, एक भी ऐसा होगा तो और खराबों को भी खराब कर देगा। फार्म तो जरूर अलग भराओ, एक दो को देखें भी नहीं तो ये समझ सकेंगे। ये सब युक्तियां चाहिए तब तुम सक्सेसफुल होते जाएंगे। बाप भी व्यापारी है, जो होशियार होंगे वो अच्छा व्यापार करेंगे। बाप कितने फायदे, कितना फायदे में ले जाते हैं। झुंड इकट्ठा जाए तो बोलो फार्म अलग अलग भरना है, फार्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंडेड हो तो इकट्ठा बिठाकर पूछना चाहिए, इकट्ठा बिठाकर पूछना चाहिए। गीता पढ़ी है, देवताओं को मानते हो, बाबा ने कहा है भक्तों को ही सुनाना है, भक्तों को ही सुनाना है। हमारे भक्त और देवताओं के भक्त वे जल्दी समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। देह अभिमान कड़े से कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। जब तक देह अभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए, अशरीरी बनकर जाना है। यहाँ क्या रखा है, यहाँ क्या रखा है? बाप ने कहा है मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। बड़ी मंजिल है, चलन से मालूम पड़ता है, ये अच्छे मददगार बनेंगे। कल्प पहले भी, पहले मिसल जैसे कल्प पहले बने थे, ऐसे अब भी ये मददगार बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो इसकी संभाल करनी है, आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है, अभ्यास करो अभ्यास करो, हम अशरीरी आए थे अब अशरीरी बनकर वापस जाना है। वरदान, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भाव, क्या बनो, प्रयोगी आत्मा भाव। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार है, योग करने में भी होशियार है और योग कराने में भी होशियार है, तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो ऐसे प्रयोग करने में भी योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है, सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी बने हैं, कहां तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी हैं। स्लोगन, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल वा संघ के रंग में नहीं आ सकती, संघ के रंग में नहीं आ सकती। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट परिष्ठा स्थिति का अनुभव करो, परिष्ठा स्थिति का अनुभव करो। सदा खुशी में झूलने वाले सर्व के विघ्न हर्ता, सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे, स्थिति में क्या होंगे, डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं सब कुछ बाप का है, मेरा कुछ नहीं सब कुछ बाप का है, जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न, मेरा नहीं तो निर्विघ्न, क्योंकि मेरा है तो विघ्न आएंगे, मेरा नहीं है फिर मेरे सामने क्या रुकावट है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।